ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ ਹਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸਾਂਸੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ ਹਮੇ ਯੇ ਸੁਬਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਯੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਂ ਕਿ ਹਮੇ ਯੇ ਇਸਤਹਿਕਾਕ, ਯੇ ਬਰਕਤ, ਯੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਬਾ ਪਾਸ ਆਜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘੜੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਆਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਝੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਝੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਖੁਦਾਮ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਮੇਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੇ ਦਰੀਚੋਂ ਮੇਂ ਤੁਝੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਤੁਝੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਜ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ, ਆਜ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ ਆਜ ਹਮ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਖੇਂ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਬਰਕਤ ਕਾ ਬਾਇਸ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਹਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਯੇ ਦੁਆ ਮਾਂਗਤੇ ਹੈਂ, ਆਮੀਨ। ਹਮ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਂ ਸੇ ਸੀਖ ਰਹੇ ਹੈ ਈਮਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਈਮਾਨ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਈਮਾਨ ਜੋ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਂ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸੋਚ ਸੇ ਕਹੀਂ ਬੜ ਕਰ, ਹਮਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੇ ਕਹੀਂ ਬੜ ਕਰ, ਹਮਾਰੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ, ਹਮਾਰੀ ਦੁਆਓਂ ਕਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ੋਂ ਕਾ, ਹਮਾਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ੋਂ ਸੇ ਬੜ ਕਰ ਖੁਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਕਿਸ ਲੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਜਬ ਹਮ ਈਮਾਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਆਜ ਹਮ ਇਸੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੀਖ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਸੀਖਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਪਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖੂੰ ਤੋ ਯੇ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਔਰ ਲੋਹੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ, ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਈਮਾਨ ਕਿਸ ਪਰ ਹੈ। ਯੇ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਲਈ ਅਬਰਾਨੀਓ ਕਾ ਮਸਨਫ, ਅਬਰਾਨੀਓ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਅਬਰਾਨੀਓ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਓ ਕੋ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਮਸਨਫ, ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਨੀਓ 11 ਬਾਪ ਉਸਕੀ 6 ਆਇਤ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਨਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਬ ਵੀ ਹਮ ਅਬਰਾਨੀਓ ਕੇ ਖਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਬਰਾਨੀਓ ਕਾ ਖਤ ਹਮੇ ਈਮਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਿਕਮਤ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਜ ਹਮ ਉਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੇ ਸੀਖੇਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਉਸ ਦੌਰ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਕੀਆ ਤੋ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਉਨਕਾ ਅੰਜਾਮ ਔਰ ਉਨਕਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਯੇ ਕਿਉਂ? ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਕੀ ਔਰ ਇਨ ਪਰ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਪਰ ਇਨ ਵਾਕਿਆਤ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਜਬ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਬ ਵੀ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰੂੰਗੀ, ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਗਾ, ਹੋਗੀ, ਇਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਂ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਪਕੇ ਆਪ ਬਹਿਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬਹਿਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਹਿਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਭਾਈ, ਉਹਨੋਂਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦਤ ਸੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੋ ਜਬ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਰੂਗਾ, ਹੋਗਾ, ਹੋਗੀ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਮੇਂ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਜ ਹਮ ਯਹੀ ਸੀਖੇਂਗੇ कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। दुनिया में कोई भी ऐसा खबरनामा या न्यूज़ जिसे कहते हैं, जैसे बहुत दफा कहते हैं कि अभी कोई वाकया नहीं होता तो जियो वाले वहां पर पहुंच जाते हैं टीवी पर दिखाने के लिए, ऐसा ही कहते हैं ना जी। वो जियो वाले तो भाई पहले ही पहुंच जाते, जाके सारा कुछ दस देंगे, कह देंगे ना। जियो से भी बड़ी एक न्यूज़ है, जियो से भी बड़ी एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा कुदरत वाला खुदा है जो सब खबरें रखता है, और उसका कलाम हमें एक एक बात बताता है। इससे पहले के जियो, इससे पहले के जंग अखबार, इससे पहले के BBC, अमेरिका की सबसे बड़ी जो खबारी तंजीम है, इससे पहले, उनसे पहले खुदा हर एक चीज़ से वाकिफ है और वो जानता है कि क्या होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो आज का भी हाल जानता है, वो कल का भी हाल जानता है, और वो आने वाले दौर का भी। इसलिए खुदा का कलाम हमें बार बार कहता है, बार बार सिखाता है कि यीशु मसीह, आपने किसी ने कोई बात नोट की है मैंने आयत गलत बोली है? किसी ने नोट नहीं की? ज़रूरत है नोट करने की, ज़रूरत है तवज्जो देने की। मैंने कहा यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यकसा है। सही आयत क्या कहती है? यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। कल से मुराद यानी कि जो वक्त गुजर चुका है, आज से मुराद यानी आज का दिन, और अब तक यानी कि आने वाली वो तमाम खबरें, आने वाले वो तमाम हालात, आने वाली वो तमाम बातें। सो आज हम नूह के बारे में सीखेंगे बच्चों, नूह के बारे में सीखेंगे कि नूह नबी ने क्यों कश्ती बनाई, क्यों जरूरत पड़ी, और किन लोगों को बचा लिया गया, क्यों इतनी बड़ी दुनिया में उस वक्त लाखों करोड़ों के हिसाब से हो सकते हैं हमें नहीं पता कितनी दुनिया थी, लेकिन हमें यह पता है कि खुदा ने कहा कि इतना बड़ा बेड़ा तैयार कर, इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर, और लोगों को दावत दे के उसमें आकर बैठें, और जो कोई उस कश्ती में बैठेगा वो उस तूफान से, जो पानी का तूफान आने वाला है, उस बारिश से जिससे आसमान से खुदा बरसाएगा, उस बारिश को जिससे खुदावन खुदा आसमान की खिड़कियां खोलकर ज़मीन पर भेजेगा, 40 दिन और 40 रात तक ये सिलसिला चलेगा। तो खुदा ने कहा कि इतनी बड़ी बेड़ी बना, इतनी बड़ी कश्ती बना के सबको दावत दे। तो जब नूह ने यह बात सुनी, मेरे साथ देखें अब्रानियों 11 बाप उसकी 7 आयत। सब बहन भाई जो पढ़ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो बोल सकते हैं, मेरे साथ इस आयत को कहें, अब्रानियों 11 बाप उसकी 7 आयत। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आई थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचाने के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। अगर कोई आज रासबाज ठहरता है खुदा की नजर में तो ईमान से। ईमान का मतलब यकीन कर लेना, किसी का एतबार कर लेना, या किसी की बात को मान लेना कि वो सच कह रहा है। हो सकता है हमें इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन नूह, हो सकता है कि खुदा के सामने जब उसने ये कलाम पाया हो, जब ये बात उसने सुनी हो कि खुदा ने कहा है कि कश्ती बना, हो सकता है वो हैरान हुआ हो कि खुदा इतनी बड़ी कश्ती की ज़रूरत क्यों है, तू क्या करने को है, हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है। अगर आज आपसे भी मैं कुछ कह दूं या कोई आपसे कह दे कि आप ऐसी अजीब चीज़ बनाओ, उसका मकसद मैं नहीं बताऊंगा, तो आप हैरान होंगे। लेकिन क्या हुआ, नूह ने खुदा से जब ये हदायत पाई तो उसने फरमा बरदारी की, क्योंकि खुदा ने उस पर जाहर किया कि मेरा दिल उकता गया है, मेरा दिल नाराज है, मेरा दिल राजी नहीं बनी नू इंसान पर, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ गुनाह किया है। सो नू ने हदायत पाकर, नू ने खुदा से तालीम पाकर, इस पैगाम को सुनकर क्या किया, उसकी फरमाबरदारी की और अपने घराने को बचा लिया। आज इस कहानी में हम दो ग्रो देखेंगे, यानी कि दो पार्टियां जिसे कह सकते हैं, दो ग्रुप कह सकते हैं, दो किस्म के लोग कह सकते हैं। एक वो है जो आसमानी लोग जाहर किए गए हैं, एक वो है जो रूहानी लोग जाहर किए गए हैं, एक वो है जो अबदी जिंदगी के मालिक जाहर किए गए हैं, एक वो लोग हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, एक वो लोग हैं जो खुदा की फरमा बरदारी करते हैं, और ये वो लोग कौन है, नूह का खानदान। किसका खानदान? क्या आज हम कह सकते हैं कि हम भी नूह के खानदान के साथ शबी रखते हैं? कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं। घबराने की जरूरत नहीं है। नूह ने यीशु के कलाम पर ईमान किया। आप में से कितने यीशु पर ईमान रखते हैं? सभी रखते हैं, तो फिर घबराने की जरूरत क्यों है? शर्माने की जरूरत नहीं। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम उसकी नजर में रासबाज हैं। उसकी नजर में क्या है? नहीं यकीन, कड्डो हवाला। दूसरा करंथियों 5:21 आयत च लिखिया, मैं चाहना कि तुसी इस गल ते यकीन कर लो, इस तो पहले के असी अगे वधिए, इस तो पहले के कोई होर गहरी गल सीखिए, इस सादा गल नूं जान जाइए, ताकि अबलीस जिहड़ा दिन रात साना झूठ मारदा, ओए 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 मैं अपने गवांढी नूं सालन नहीं दिता इस करके मैं झूठी हो गई, ओए ओए मैं अपने दोस्त नूं पैसे नहीं दे सकिया इस करके मैं झूठा हो गया। बाइबल कहती अगर है तो दो, अगर नहीं है तो कहो के माजर चाहना मैं ताड़ी मदद नहीं कर सकता, तुहानूं सालन या रोटी या कपड़ा या कोई और चीज़ नहीं दे सकती या दे सकता। दूसरा करंथियों 5:21 आयत इहदे च खुदा दा बंदा पालूस रसूल यीशु मसीह दे बारे च दसदा पिया वा। दूसरा करंथियों 5:21 आयत इत्थे खुदावंद यीशु मसीह बनी नू इंसान नू दस रहा उन्हां दी हालत, उन्हां दी शक्लो सूरत रूहानी तौर ते खुदा दे विच की आ। असी अबलीस दे झूठां नू सुन के अपने आप नू नीचा करन दे विच बहुत दलेर आ। अगर अज तुहानू सारयां नू एक वर्का दे दिता जावे ते तुहानू अपनियां कमियां दा कह दईए शुरू करना लिखो ते वर्कियां दे वर्के भर जाणगे, लेकिन अगर कह दिता जावे कि खुदा दे विच तुहाडियां सिफात या खुदा दे विच अच्छाइयां की आ या खुदा तुहानू किस तरह देखदा वा, ते हो सकदा सी कंबीए लिखण लगे। बहुत दफ़ा असी घबरा जाने कि खुदा साढ़े बारे च की सोचदा वा, असी ओ सुनदे ते आ लेकिन यकीन नहीं करदे। यीशु मसीह कहिंदा तुसी रास्तबाज लोग हो। की हो तुसी? किस तरह? क्या तुसी कुछ कीता? नहीं। क्या कोई चंगा काम कीता तद करके? क्या किसी नूं रोटी खवाई तद करके? क्या किसी नूं कपड़े लैके दिते तद करके? या कोई कहिंदे कि बुढ़ी माई नूं अपना कहिंदे कि सड़क पार कराई तद करके? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमान के बायस। यही गल इत्थे असीं पढ़ांगे। दूसरा करंथियों 5:21 आयत च लिखिया जो गुनाह से वाकिफ ना था। कौन था जो गुनाह से वाकिफ ना था? यीशु मसीह। यीशु मसीह की जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह नहीं पाया गया, कभी भी वो गुनाह से वाकिफ ना था। गुनाह से वाकिफ होने से मुराद यानी कि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था। यीशु मसीह जानता था बदी क्या है, यीशु मसीह जानता था बुराई क्या है, यीशु मसीह को सारा इल्म था। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि वो गुनाह से वाकिफ यानी कि उसकी ज़िंदगी में उसका कोई तजर्बा नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पर वो बंदा कभी भी नहीं समझ सकता जिसको कभी बिजली का झटका ना लगा हो कि वो कैसा होता है। मुझे बिजली का झटका लगा हुआ है बहुत देर पहले, मैं समझ सकता हूं कि उसका एहसास कैसा होता है। किसको कभी बिजली का झटका नहीं लगा? किस किस को बिजली का झटका लगा है? काफी लोगों को लगा है, जिसे नहीं लगा वो हाथ खड़ा करे। किसको नहीं लगा बिजली का झटका कभी? बहन बीनिश को पता ही नहीं कि उसका एहसास कैसा होता है। तो यहां पर भी खुदा का बंदा पालूस कहता है वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, आतफ, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, यानी कि यीशु मसीह की जात में, उसके बोलने में, उसके सोचने में, उसके उठने बैठने में, उसकी जात में कहीं भी गुनाह का कोई तजर्बा नहीं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर पाक और मुकद्दस है। इसीलिए पालूस कहता है वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने, उसी को यानी कि यीशु मसीह को उसने, उस कौन है? खुदा। उसी को उसने यानी कि यीशु मसीह को खुदा ने क्या किया? हमारे वास्ते, आप सब के वास्ते, पूरी दुनिया के वास्ते, एक एक फर्दे बशर के वास्ते, जानवरों के वास्ते नहीं, परिंदों के वास्ते नहीं, बनीनू इंसान के वास्ते, हमारे वास्ते गुनाह ठहरा दिया। क्या ठहराया? गुनाह। और क्या कहता है खुदा का कलाम? कि उसके सारे गुनाह हम पर लाद दिए गए, उसको हमारे लिए बदी बना दिया गया, उस पर सारे अल्जाम लगा दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसको मारा गया। और क्या हुआ? आपको बराबा की कहानी याद होगी। बराबा जो चोर था, जो डाकू था, जिसने उस वक्त में बहुत सी बुराइयां की थी, ऐसी ऐसी बुराइयां कि हम बयान नहीं कर सकते, उस बराबा ने क्या किया था? हर तरह के बुरे काम किए थे, लेकिन जब मौका आया चुनाव का तो उन्होंने कहा कि हमें बराबा दे दे और यीशु मसीह को मसलूब कर दे। बराबा की जिंदगी में आज हम सब की तस्वीर नजर आती है। हम गुनाहगार थे, हम निकम्मे थे, हम हर तरह से मुजरम थे, लेकिन खुदा को क्या पसंद आया? हमें छोड़कर अपने बेटे को ले ले। और उसके कहने का मतलब यही है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को, यीशु मसीह को खुदा ने हमारे वास्ते गुनाह बना दिया, ताकि हम उसमें क्या शर्मिंदा हो? नहीं। क्या उसमें हम नीचे किए जाएं? नहीं। क्या उसमें हम अलहदा किए जाएं? नहीं। क्या हम उसमें गुनाहगार किए जाएं? नहीं। क्या लिखा है? ताकि हम उसमें होकर खुदा की रासबाजी हो जाएं। रासबाजी से मुराद हम, से मुराद हम सब, और रासबाजी का लफ्ज जमा के लिए, यानी कि हम सब रासबाज गिने जाएं। रासबाज का मतलब मुतकब्बर किया हुआ, पाक किया हुआ, जिसकी तदसीक हो जाए। रूमी हुकूमत में जब किसी को कोई रासबाज ठहराता था तो रूमी हुकूमत का जो स्टैंप या जिसे कहते हैं ठप्पा, उसके पेपर के ऊपर लग जाता था। जब वो अदालत में पाक किया जाता था, बे अल्जाम ठहरता था। इसी तरह खुदा की अदालत में जब अबलीस शैतान भाई नईम के लिए, भाई मंगू के लिए, भाई वसीम के लिए, भाई ताहर के लिए, भाई फैसल के लिए, बहन बीनिश के लिए, भाई रजेश के लिए, दिन रात आप में से हर एक के लिए उसके हजूर जाकर कहता है, खुदा मेरे पास बड़ी लिस्ट है, इन लोगों ने झूठ बोला है, खुदा इन लोगों ने बुराई की है, खुदा इन लोगों ने ये गुनाह किया है, तो यीशु मसीह कहता है मेरे बेटे ने इनका कफारा दिया है, मेरे बेटे ने इनकी कुर्बानी दी है, मेरे बेटे ने इनके लिए अपनी जान दी है, और इन्होंने उसका यकीन किया है, इसलिए ये रासबाज हैं, अबलीस मेरे सामने से दूर हो जा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। वो दिन रात हर वक्त यही करता रहता है। سو آئیں میرے ساتھ دیکھیں پیدائش اس کا چھٹا باب کہ نوح کس طرح راست باز گنا گیا، نوح کس طرح اس بے دین زمانے میں راست بازی کی منادی کرتا رہا۔ پیدائش اس کا چھٹا باب اس کی پہلی آیات سے پڑھیں گے، میرے ساتھ غور سے سنیں، میرے ساتھ اس آیات کو سنیں غور سے۔ پیدائش 6 باب اس کی پہلی آیت، جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں چاہتا ہوں کہ اس الفاظ پر غور کریں، اس وقت میں خدا کے بیٹوں سے مراد، جب ہم بائبل مقدس میں اس الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس دور میں یہ بات ان فرشتوں کے ساتھ متعلقہ ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اس سے پہلے کہ فرشتوں کے بارے میں سیکھیں، ایک فرشتہ تھا جس کا نام کیا تھا؟ لوسیفر۔ کیا تھا؟ جسے صبح کا ستارہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ صبح کا ستارہ۔ یہ ایسا فرشتہ تھا جو یسوع مسیح کے داہیں ہاتھ کھڑا رہتا تھا، اس کی حضوری میں کھڑا ہوتا تھا، اور وہ تمام فرشتوں کو کیا کرتا تھا؟ حکم دیتا تھا، تمام فرشتوں کو سکھاتا تھا، بتاتا تھا کہ یسوع مسیح کا حکم ان کے لیے کیا ہے۔ اور پھر یہ فرشتہ تمام فرشتوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اپنی پیدائشی سے اتنا کامل کہ اس میں کوئی بدی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ فرشتہ ذہنیت کے لحاظ سے آج زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ عقل مند ہو، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں پائی جاتی سوائے یسوع مسیح کے کہ جو شیطان سے زیادہ عقل مند ہو۔ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے وہ واحد ہستی جو ابلیس، اس لوسیفر، شیطان سے، اس کے ہٹکنڈوں سے ہر طرح سے واقف ہے۔ سو یہ ابلیس لوسیفر فرشتہ، اس کا کام کیا تھا؟ خدا کے حضور پرستش کرنا۔ کیا کرنا؟ رہنمائی کرنا۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ جب یہ خدا کی حضوری میں گاتا تھا تو ہم اس کا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، میں اس کا بیان نہیں کر سکتا، نہ اپنے احساس سے نہ الفاظوں میں، لیکن ہاں امید دلا سکتا ہوں کہ جب ہم یسوع مسیح کی حضوری میں کھڑے ہوں گے، جب اس کی حضوری میں پرستش کریں گے، جیسے کوائر کے ساتھ مل کر پرستش کرتے ہیں، جب اس کی حضوری میں کھڑے ہوں گے اور دن رات اس کی پرستش کریں گے، تب ہم اس احساس کو پا سکیں گے کہ مکمل طور پر اس خدا کی حضوری میں کیسی عجیب قدرت ہے۔ سو یہ فرشتہ تھا، اور اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا۔ اس فرشتے نے چاہا کہ میں خدا کی مانند بنوں گا، اس فرشتے نے چاہا کہ میں خدا کے تخت سے بھی زیادہ اپنا تخت اونچا کروں گا، اس فرشتے نے چاہا کہ میں تمام دنیا پر حکومت کروں گا، اس فرشتے نے چاہا کہ وہ تمام فرشتوں کا کیا ہو؟ حاکم ہو۔ یہ اس کی خواہشیں تھی، اسی کے باعث خدا نے اسے آسمان سے گرا دیا، اور پھر عدن میں جو واقعہ ہوا، آدم کو اور ہوا کو بہکایا اور آدم نے اس کی بات کو مانا تو گناہ دنیا میں آیا۔ گناہ جیسی کوئی بھی بات پہلے موجود نہیں تھی، اسی کی نافرمانی کے باعث گناہ دنیا میں آیا، اور دنیا میں جو پہلا آدم تھا اس نے گناہ کا چناؤ کیا۔ سو یہاں پر لفظ لکھا ہے تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا۔ یہ لفظ ان گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں چند ایک حوالہ جات آپ کی تربیت اور نصیحت کے لیے۔ ایوب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں ایوب کی کتاب سب سے پرانی کتاب ہے، لکھے جانے میں یہ سب سے پرانی کتاب ہے، اس سے پہلے کہ موسیٰ نبی پیدائش کی کتاب کو، توریت کی کتاب کو، اور نبیوں کے دوسرے حصوں کو لکھتا، پہلی 5 کتابوں کو۔ ایوب کی کتاب اپنے وقت کے لحاظ سے لکھے جانے میں سب سے پرانی کتاب ہے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں، یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ابلیس نے دیکھا۔ अय्यूब उसका पहला बाप उसकी छठी आयत, हम इसे अभी पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि इस हवाले में क्या बात हो रही है जो पढ़ नहीं सकते। जब अबलीस ने, शैतान ने देखा कि अय्यूब नबी जमीन पर रास्तबाज है, अय्यूब नबी खुदा की नजर में रास्तबाज है, तो वो क्या हुआ, आग बगुला हुआ। और उसने क्या किया कि मैं खुदा के पास जाऊंगा और उस पर इल्जाम लगाऊंगा और कहूंगा कि हां हां हां, अय्यूब इसीलिए तेरी इबादत करता है क्योंकि तूने उसे हर तरह की नेमत, बरकत और हर तरह की क्या कहते हैं चीज बख्शी हुई है, तभी वो तेरी इबादत करता है। अगर तू अपना हाथ उससे हटाए, अगर तू अपनी बाड़ उससे हटाए, यहां पर रुकें, जैसे अय्यूब के गिर्द रूहुल कुद्दस की बाढ़, खुदा की हजूरी, खुदा के सिपर, जैसे खुदा की मौजूदगी उसके साथ थी, आज आप में से हर एक के साथ उसका पाक रूह है। क्या है? पाक रूह। कोई भी अबलीसी तासीर, कोई भी शैतान का हटकंडा, कोई भी उसकी कुदरत आपको छू नहीं सकती जब तक खुदा इजाजत ना दे। और ऐसी ही बात अय्यूब की जिंदगी में थी, खुदा ने खुद इजाजत दी। और क्या हुआ, छठी आयत में देखते हैं कि खुदा के बेटों से बात करते हैं हम। लिखा है, एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। खुदा के बेटों का अल्फाज जो पुराने अहदनामा में इस्तेमाल किया गया है, ये फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह दूसरे बाब की पहली आयत में भी देखते हैं, फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा के हजूर हाजिर हो, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदा के आगे हाजिर हो। फिर एक और हवाला देखते हैं, 37वां बाब, अय्यूब 37वां बाब, वहां पर भी इनके बारे में जिक्र मिलता है, जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो एक वक्त में खुदा की इबादत करते थे, खुदा की परस्तिश करते थे, खुदा के नाम को जलाल देते थे, उसे इज्जत देते थे, लेकिन इस वक्त वो नाफरमान हैं, वो दोजख के लिए तैयार किए गए हैं, हमेशा की आग जो फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। 37वां बाब, माजर चाहता हूं, 38वां बाप, उसकी 8-7 आयत, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। आगे वही बात, थे से मुराद एक वक्त था, प्रस्तुत करते हैं यानी के मौजूदा, और प्रस्तुत करेंगे यानी के मुस्तकबिल में। तो यहां पर खुदा का बंदा अय्यूब उस सच को बयान करता है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, सुबह के सितारे से मुराद लूसीफर को यशाया 14वां बाप उसकी 13वीं आयत में कहा गया है कि ऐ सुबह के सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिराया गया। सुबह के सितारे का लफ्ज यहां पर भी फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इन फरिश्तों ने क्यों चाहा कि इंसान की बेटियों से शादी करें, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, ताकि आप तक निजात दहिंदा ना पहुंचे, ताकि यीशु मसीह पैदा ना हो। शैतान की शुरू ही से ये कोशिश थी, जब से उसने ये बात सुनी थी कि खुदा ने मुझ पर लानत की है, आदम को कहा है तू भी अपनी मेहनत मजदूरी की रोटी खाएगा, और औरत से कहा कि तेरी नस्ल में से एक बेटा पैदा होगा जो मेरे सर को कुचलेगा, तब ही से अबलीस की ये कोशिश थी कि औरत की नस्ल से आने वाली तमाम नस्लें अबलीसी पैदा हों। और उसने इसी कोशिश में क्या किया, उन तमाम गिराए हुए फरिश्तों ने जो बदरूहें बन चुकी थी, आदमियों की अंदर बसेरा किया, उन लोगों के अंदर बसेरा किया जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, जिन्होंने नूह के पैगाम को सुना नहीं था, उनके अंदर बस कर उन्होंने क्या किया, इंसान की, आदमियों की बेटियों से शादियां की, ताकि उनकी नस्ल से मसीह पैदा ना हो। जब जब भी आप पुराने अहदनामा में देखते हैं औरत की नस्ल पर हमला किया गया है इन शैतानी फौजों के वसीला से, इन रूहानी फौजों के वसीला से, इन बदरूहों के वसीला से, एक ही कोशिश रही है कि यीशु मसीह पैदा ना हो। बड़े दिन के पैगाम में भी हम देखेंगे कि हेरोदीस को वक्त पड़ गया कि कहां पे कौन बादशाह पैदा हो गया है। उसने पहले 2 साल के तमाम बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया कि मेरी बादशाही को क्या है, खतरा है। उसके पीछे इबलीस की क्या सोच थी कि यीशु मसीह पैदा ना हो ताकि निजात का काम मुकम्मल ना हो, ताकि आज आप अपने आप को रासबाज ना कहें। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो आप रासबाज कभी नहीं ठहर सकते थे। आज हमें उसने यीशु मसीह के वसीला से यह रासबाजी हासिल है। सो ये लोग क्या थे? बेदीन लोग थे, बेदीन लोग जिन्होंने खुदा का इनकार किया। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है। नहीं यकीन, बहुत अच्छी बात है, आपने पूछा, कड्डो हवाला। दूसरा पत्रस उदा 2:5 ताकि हम खुदा के कलाम में से सीखें। मैं चाहता हूं कि कलाम को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। आप बहुत खुश नसीब हैं, आपके पास मुकम्मल बाइबल है, आपको अभी भी आज़ादी है मुल्क पाकिस्तान में कलाम पढ़ने की, सुनने की और गिरजाघरों में इकट्ठा होने की। बहुत से ऐसे मुल्क हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इकट्ठे होते हैं मसीह के नाम पर तो मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, पादरियों के सर कलम कर दिए जाते हैं। आप अभी भी खुश नसीब हैं, हम पर वो आफतें अभी तक नहीं आई जो दूसरे ममालक में लोग सामना कर रहे हैं। इसलिए जितनी बाइबल अपने अंदर उतार सकते हैं उतारें, ताकि जब ये बाइबल आपसे कोई छीन ले, जिस तरह पालूस रसूल जेल में था तो उसे याद था कि खुदावंद मेरा खुदा है, मैं उसके वसीला से सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे पत्रस जब जेल में था, उसका भरोसा खुदा पर था, उसने कहा कि हाँ मेरा खुदा मुझे रहाई दे सकता है। सो दूसरा पत्रस उसका 2:5 यहाँ पर लिखा है, मेरे साथ गौर से इसे सुने। और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदिन दुनिया पर तफान भेजकर रासबाजी के मनादी करने वाले नूह को माह और उन 7 जानों को बचा लिया। अगर मैंने ये अल्फाज गलत कहा तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। आदमियों को बचा लिया, नूह को माह यही लफ्ज है ना, माह और 7 आदमियों को बचा लिया। क्या हुआ? खुदा ने उस पहली दुनिया को ना छोड़ा। ये दुनिया कौन है? जिन्होंने खुदा का इनकार किया और बेदीन दुनिया पर तूफान भेजा। इसीलिए मैंने कहा कि वो बेदीन लोग थे, इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने खुदा का यकीन नहीं किया। और आज भी इस दुनिया में बहुत से बेदीन लोग हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? उन बेदीन लोगों का हाल ऐसा ही होगा जैसे उस वक्त लोगों का हुआ। इसलिए हमें खुश होने की जरूरत है कि हम जिस तरह नूह के साथ जो लोग थे जिन्होंने यकीन किया वो बच गए। आप में से कितने यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं? अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो आप कहां पर जाएंगे? आवाज नहीं आई, कहां पर जाएंगे? क्या अगर अबलीस आज आपको आके कह दे कि आप आसमान पर जाएंगे तो यकीन करेंगे? यकीन करने की जरूरत है। मेरी बात को गौर से सुने, मैंने कहा कि अगर अबलीस आकर आज आपको कह दे कि आप आसमान पर जाओगे तो जवाब है जी हां। गौर से सुने, ये आपका इम्तहान है। अगर अबलीस आकर कह दे कि आप आसमान पर नहीं जाओगे तो आपका जवाब क्या होगा? जाएंगे। क्या करेंगे? इस ईमान पर कायम रहें और गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور اس کے بعد ہاللویا آئیں ہم دعا کریں. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جس طرح نوح کے خاندان کو تو نے بچایا آج ہم سب کو بھی تو نے یسوع مسیح میں محفوظ کیا ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین.